നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയര്യാണം നമോ വജ്രായാണം നമോ ലോയേ സൗസാഹൂണം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതമോഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാര്യോ ജൈനധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവമംഗലമാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണാം ജയനം ജയതു ശാസനം ജയനം ജയതു ശാസനം നമയോണിജിണം വീരം അനന്തവർണാണ ദംസണ സഹാവം ഓച്ഛാമിണിയം സാരം കേവലീ ശുദ് കേവലീ ഭണിതം. ഭഗവാൻ മഹാവീർ സ്വാമിക്ക് നിർവാൺ കല്യാണക്ക് ബാധക ആദ്യ പഹല ദിൻ നൂതൻ വർഷ കെ നാം സേ ജാന ജാതാ ഹൈ. ഔര ജബ് പൂജ്യ ഗുരുദേവ് ശ്രീ കി ഉപസ്ഥിതി തീർത്ഥധാം സ്വർണപുരി മേ തീ, ഉസ് സമയ തോ അനേക സ്ഥാനോ സേ ലോഗ് സാദർമി ഭായി അപ്നെ ഗുരുദേവ് ശ്രീ കെ സാന്നിധ്യ മേ പധാർകർ നൂതന വർഷ കി ബോണി കെ രൂപ മേ ആജ് ഗുരുദേവ് ശ്രീ നൂതന വർഷ കെ ഉപലക്ഷ മേ ഹമേ ക്യാ ആശീർവാദ ദേംഗേ വോ ആശീർവാദ ഗ്രഹണ കരനേ ജാതേ ഥേ. ठीक ऐसा ही नजारा अभी अपन ने इस जिन मंदिर के प्रांगण में पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलवाणी के द्वारा नूतन वर्ष के प्रवचन के माध्यम से अपन ने सुना. देखो, काल चक्र तो अपने अविरल प्रवाह से निरंतर बह रहा है. अनेकों बार अनादि काल से अनेकों बार ये नूतन वर्ष का दिन भी आया है. नहीं आया ऐसा नहीं है, साल में आता ही है ना. तो अनेकों बार सच में नूतन वर्ष का दिन भी आया है, लेकिन हमारे जीवन में सुप्रभात खिला नहीं है ना. आज के दिन नया दिन कहते हैं, नया दिन कि भैया नया दिन हुआ, नया डग बढ़ाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ. क्या मतलब इसका? कि अनादि काल से आज तक का हमारा जीवन मिथ्यात्व के अंधकार में व्यतीत हुआ, संसार परिभ्रमण के चक्र में अपन लोग पिसे, भाव मरण के कलंक हमने झेले, जन्म मरण के चक्र में हम फंसे रहे, लेकिन आज के दिन से वो बात बीती हुई बात होनी चाहिए, है ना. और हमारे जीवन में मुख्य रूप से सम्यक दर्शन का ऐसा सुनहरी प्रभात खिलना चाहिए कि जिसके लिए गुरुदेव श्री भी फरमा रहे थे कि सम्यक दर्शन का सुप्रभात यदि हमारे जीवन में खिला और बाद में हम अपना विचार कदाचित बदल दें और केवल ज्ञान नहीं भी लेना चाहें तो एम बन से नहीं, है ना. केवल ज्ञान लेना ही होगा, माने केवल ज्ञान लेना ही होगा, माने लेना होगा, माने कोई दे रहा है अपने को केवल ज्ञान, अपने को लेना होगा, ये नहीं है. केवल ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा ही. गुरुदेव श्री की शैली, आचार्य अमृत चंद्र देव की उस शैली का अनुसरण करती है कि जहां पर वो अप्रतिहत भाव की बात करते हैं. आज भी दो तीन चार बार गुरुदेव ने लिया आ तो अप्रतिहत भावे बात ली दी छे. और वो जब भी अप्रतिहत भाव की बात चलती है, समय सार की 38 नंबर की गाथा और प्रवचन सार की 92 नंबर की गाथा को याद करते हैं. वो तो है ही कि ये जो सम्यक दर्शन का सुप्रभात मेरा हुआ या होगा, जो भी मान लो, कि सम्यक दर्शन का सुप्रभात हुआ, सम्यक ज्ञान का सुप्रभात हुआ, सम्यक चारित्र का सुप्रभात हुआ। अरे चारित्र की पूर्णता में या मुनि दशा के योग्य चारित्र मुनिराज को भगवान को हुआ, तो वो कहते हैं कि भले ही चारित्र की दशा से हम गिर जाएं, तो भी इतने नहीं गिरेंगे कि स्वरूपाचरण चारित्र का भी घात हो जाए। स्वर्ग में जाएंगे तो मुनि दशा का चारित्र नहीं रहेगा, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र की दशा तो कायम रहेगी। और सम्यक दर्शन और ज्ञान का तो कहना ही क्या, कि वो तो टिकेगा और ठेठ केवल ज्ञान होने तक, वो केवल ज्ञान में जाकर के ये ज्ञान मिलेगा। ये प्रवचन सार और समय सार के आधार पे तो गुरुदेव श्री फरमाते थे, उसके साथ ही इस प्रसंग का माने ये जो अप्रतिहत भाव वाली जो चर्चा है, इसका संबंध पूज्य गुरुदेव श्री के पूर्व भव से भी है। पूज्य माता जी को जो सम्यक जाति स्मरण ज्ञान हुआ और पूज्य गुरुदेव श्री का जीव पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में राजकुमार रूप से, और बहन श्री और बहन का जीव और नारायण भाई का जीव जो इस पूरे ये सब थे ना, कि ये जो वहां भगवान के समो शरण में दिव्य ध्वनि सुनने जाते थे, तो उस समय वहां पर भगवान के समो शरण में ये चर्चा चली कि ये जो सम्यक दर्शन हुआ ना, कि ये सम्यक दर्शन अब छायिक सम्यक दर्शन के साथ जुड़ेगा। माने भले ही वर्तमान में उपशम सम्यक दर्शन हो और उपशम का अभाव होकर के क्षोपशम सम्यक दर्शन हो जाए, कि ये क्षोपशम सम्यक दर्शन तब ही अभाव होगा कि जब छायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। इस तरह ये क्षोपशम सम्यक दर्शन, इसको जोड़नी छायिक कहते हैं। ख्याल में आएगा नहीं आ गया? और ये चर्चा आपको बहन श्री के जाति स्मरण ज्ञान की पुस्तक जो है बहन श्री नो ज्ञान वैभव, उसमें ये जोड़नी छायिक की बात भी आपको मिलेगी। तो ये जोड़नी छायिक के आधार पर, और फिर वो प्रमाण जब अमृतचंद्र आचार्य की शैली में वर्तमान में पंचम काल के परमागमों में भी गुरुदेव को मिला, तो एक तो पूर्व भव में सुनी हुई बात साक्षात भगवान तीर्थंकर के समो शरण में, और दूसरा इस भव में वही बात आचार्य देव के ग्रंथों में गुरुदेव श्री को मिली, तो फिर गुरुदेव श्री उस बात पर बहुत वजन देते थे। और इसलिए वजन देते थे, अपन लोग शुरुआत ही यहां से करते हैं कि भाई साहब हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें, लेकिन गिर गए तो क्या? भाई साहब अगर ये अगर इस तरह आप तो लगाओगे तो आप दुनिया में कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। क्या मतलब? कि यदि हम भोजन करें और हमें अजीर्ण हो जाएगा तो नहीं, तो लगेगा ना तो वहां भी है। यदि हम दवा खाएं और हमें रिएक्शन हो गया तो, यदि हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, यदि हम प्लेन में बैठे और प्लेन क्रैश हो गया तो, यदि हम लिफ्ट में चढ़ रहे हैं और लाइट बंद हो गई तो, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? कि इस तो का तो कहीं अंत नहीं है। और ये तो लेकर के अगर हम काम करना करेंगे तो हमारा काम कभी सफल नहीं होगा। हमारे राजस्थान में एक कहावत कही जाती है, वो क्या कहावत कही जाती है कि रोता रोता गया है गारंटी से मरे की खबर लाएगा। ये बात है, शुरुआत ही यहां से करें। ऐसा हो गया तो हम समय दर्शन प्राप्त करें, लेकिन वो छूट गया तो, अरे तू प्राप्त तो कर, बाद में छूटने नहीं छूटने की बात करना। श्रीमद राजचंद जी का एक बोल भी इस समय याद आता है, क्या? रात्रि व्यतीत हुई प्रभात हुआ, द्रव्य निद्रा से मुक्त हुए भाव निद्रा टालने का प्रयत्न करना। देखो अपन लोग, अपन तो जाग रहे हैं, कहां जाग रहे हैं, कहां जाग रहे हैं अपन? जो स्वरूप में जागता है वही वास्तव में जागता है, और हम स्वरूप में तो सोए हुए हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवान ने मोक्ष पावड़ की 31 नंबर की गाथा में यह कहा कि जो अपनी जो व्यवहार में जागता है वो अपनी आत्मा में सोता है, मतलब आत्मा का लक्ष्य उसको नहीं रहता, और जो अपनी आत्मा में जागता है वो व्यवहार में सोता है, मैंने दुनिया का लक्ष्य उसे नहीं रहता। ऐसा अजब गजब का सुप्रभात, जिसके लिए देखो आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र के शब्द भी अपन अगर पढ़ें, उन्हीं के शब्दों में भी अगर अपन पढ़ें तो देखो कितना बढ़िया कलश है ये। चित्त पिंड चंडी मवि लासी मिकास ससा सुप्रकाश भरनी भर सुप्रभात आनंद स्तुस्थित सदास्खली तेक रूप स्तस्येव चाय मुदैत्य चलार्चितात्मा। इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य देव, बहुत शानदार बात कह रहे हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। देखो इतनी गजब की बात कह रहे हैं, क्या कहते हैं इसकी भूमिका देखो, फिर अपन को नियम सार का विषय लेना है कि इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है वह अपने अनंत चतुष्टय आत्मा को प्राप्त करता है, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, किस भूमिका का आश्रय लेता है, अपनी आत्मा का, देखो उसी के चित पिंड चंडिम विलासी विकास हासह। क्या मतलब कि चैतन्य पिंड के निरर्गल विलसित विकास रूप जिसका खिलना है। क्या मतलब कि भाई चैतन्य पुंज का अत्यंत विकास होना ही जिसका खिलना है, अत्यंत विकास। गुरुदेव ने कहा था यहां केवल ज्ञान नहीं बात ली दी छे, तो केवल ज्ञान तो पूर्ण विकास हो गया। अगर अपन अपनी भूमिका से लगावें तो अपने लिए सुप्रभात क्या है कि अपन लोग मिथ्यात्व के गहर अंधकार में डूबे हुए जीव हैं, है ना। गुरुदेव श्री जैसे प्रतापी पुरुष का योग अपने को वर्तमान में मिला तो अपने जीवन में से मिथ्यात्व का अभाव होना ही चाहिए। मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक दर्शन का सम्यक सुप्रभात हो। मिथ्यात्व का अभाव होने के पहले क्या हो कि हमारे जीवन में ऐसी मुमुक्षुता का उदय हो, ऐसी आत्मार्थता का उदय हो कि जिस आत्मार्थता के होने पर, जिस मुमुक्षुता के होने पर सम्यक दर्शन का सुप्रभात खिलता ही है। और आत्मार्थी होने के चार लक्षण आत्मसिद्धि में बताए, कौन 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 से लक्षण हैं बोलो, आता है कसाय नी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, दो भवे खेद, प्राणी दया, त्या आत्मार्थ निवास। क्या मतलब इसमें कि कसाय की उपशांतता, अभी देखो कसाय मिटी नहीं है लेकिन तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करने की दिशा में जीव आगे बढ़ता है, कसाय अत्यंत पतले पड़ जाते हैं, तो कसाय की उपशांतता। और काय की अभिलाषा, अगर अभिलाषा हो तो काय की अभिलाषा हो कि मात्र मोक्ष अभिलाष। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें पूर्णता का लक्ष्य। जिसने पूर्णता का लक्ष्य बांधा अब उसे सर्वार्थ सिद्धि का भाव मिले तो चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो, नहीं चलेगा। मात्र मोक्ष अभिलाष के एकमात्र जिसको मोक्ष की अभिलाषा है, मुझे तो इस संसार के बंधनों से छूटना है, मुझे तो आत्मा की वो सादी अनंत दशा प्रकट करनी है कि जिसके बाद फिर कभी संसार में जन्म लेना ही नहीं पड़े, है ना। शर्म जनक जन्मो टले पिवेन जननी खीर, मुझे वो दशा प्राप्त करनी है, ये अंतर में भावना हो। फिर क्या तीसरा क्या आया, भवे खेद, भव में खेद हो, प्राणियों में दया हो। प्राणी माने कौन प्राणी, कि सारी दुनिया के प्राणी की तो दया पालने का ठेकेदार बनता है और अपनी आत्मा की हिंसा करता है। भवे खेद प्राणी दया, प्राणी दया का मतलब वहां दुनिया के प्राणियों की बात नहीं है क्योंकि जब तुझे अपनी दया पालना नहीं आया, तूने अपनी आत्मा का प्रति समय भाव मरण तू कर रहा है, तो जो अपनी दया नहीं पाल सकता वो दुनिया की क्या दया पालेगा। तो अपनी दया हो, और अपनी दया किस बात से हो कि अरे मैंने इस भगवान आत्मा को जो कि स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है, जिसमें भव और भव के भाव का कलंक नहीं है, जो निष्कलंक तत्व है, मैंने इस भगवान आत्मा को इस तन रूपी कारागृह में कैद कर दिया। ख्याल में आएगा नहीं है? तन कारागृह, बनिता बेड़ी, परिजन है रखवारे, ये स्थिति हो गई हमारी कि तन रूपी कारागृह में, और कारागृह में भी कोई ज्यादा उधम मचावे तो उसको वनिता रूपी बेड़ी के स्त्री रूपी बेड़ी, और ज्यादा उधम मचावे के परिजन है रखवारे। जैसे कैदी होता है ना, तो सामान्य कैदी, और वो थोड़ी उधम मचाने लगे तो उसके हाथों में हथकड़ी बेड़ी बांध देते हैं, और ज्यादा उधम मचाने लगे तो दो गनमैन वहां खड़े कर देते कि बेटा हिलाना अगर यहां से तो फिर तेरा क्या होगा तू सोच ले। तो इसी तरह इस जीव को तन रूपी कारागृह, फिर भी चैन नहीं पड़ा, शरीर में आ गया तो भी इसे अपनी गलती का बोध नहीं हुआ कि देखो अशरीरी भगवान आत्मा उसको इस शरीर की कैद में रहना पड़े, और वो शरीर भी कैसा है कि नव द्वार बहे घिनकारी, कि जितनी भी संसार में अशुद्धि दिखाई देती है, जितनी भी मलिनता दिखाई देती है, जितनी भी गंदगी दिखाई देती है, उस सब का उद्गम स्थल यह शरीर है। बोलो, जितनी गंदगी है सबका उद्गम स्थल शरीर एक नहीं है, हैं? तो ऐसे शरीर में भगवान आत्मा को रहना पड़े, पवित्र तत्व को ऐसी गंदी जगह में रहना पड़े, ये कलंक की बात नहीं है तो और क्या है। अब मुझे इस भव में ये कलंक मिटाना है, मुझे ऐसा सुप्रभात अपने जीवन में प्रकट करना कि यदि मैं सम्यक दर्शन तक पहुंचूं उसके पहले मुझ में मुमुक्षुता का बीजारोपण हो। और मुमुक्षुता का बीजारोपण का मतलब यह कि मुझे मात्र मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक मुमुक्षुता से आगे बढ़कर के तीव्र मुमुक्षुता में जीव आता है, और उसके बाद वो सम्यक की प्राप्ति के योग्य परिणति को प्राप्त करता है। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो उनने कहा कि सम्यक का प्रभात तो खिल गया, अब मुझे कौन सा प्रभात खिलाना है? कि सम्यक दर्शन हो गया तो केवल ज्ञान का प्रभात खिलाना है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो ये रोजाना सूर्य का उदय होता है ना, दिन होता है और शाम को सूर्य अस्त हो जाता है और वापस अंधकार आ जाता है, और फिर नया सूर्य उदय होता है। इस प्रभात की तो यह स्थिति कि यह प्रभात तो 12 घंटे बाद वापस अंधकार में परिवर्तित तो होगा, लेकिन अगर तत्व ज्ञान का सूर्योदय हमारे जीवन में खिला, हमारी परिणति में खिला, तो वो प्रभात ऐसा प्रभात होगा कि जिसके बाद कभी भी मिथ्यात्व की अंधेरी आने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि साधक का श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। कहा था, आया ना, केवल ज्ञान को बुलाता है। उसका अर्थ भी गुरुदेव ने किया था। क्या अर्थ किया था? कि अरे श्रुत ज्ञान में अपनी अनादि अनंत पर्यायों सहित अपना द्रव्य और अपने अनंत गुण और अपनी अनादि अनंत पर्यायों सहित अपना भगवान आत्मा जानने में आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो उस वर्तमान में भले श्रुत ज्ञान है, लेकिन उस श्रुत ज्ञान में उस जीव को अपने ही केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। इसलिए कहा कि श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का साक्षात्कार साधक को होता है, उसी को कहते हैं कि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। बुलाता है मतलब वो केवल ज्ञान के निकट होता जा रहा है। ज्ञानी के जितने भाव हैं वो पर्यटन हैं, और अज्ञानी के जितने भाव हैं वो परावर्तन है। आ गया, अज्ञानी परावर्तन करता है। परावर्तन का मतलब होता है भटकना, और पर्यटन का मतलब होता है मोज शोक करना। पर्यटन का मतलब तो समझते ही ना, तो पर्यटन करते हैं तो पर्यटन में आनंद आता है और परावर्तन में कष्टों का अंत नहीं होता, वो कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। एक कष्ट को मिटावे चार सामने खड़े, फिर चार को मिटावे सोलह सामने खड़े, ऐसे खड़े हैं कष्ट। विचार करना भाई, ये जो सुप्रभात है ज्ञानियों ने जिस सुप्रभात को अपने सामने रखा, ये आ गया कि शुद्ध प्रकाश की अतिशयता के कारण जो सुप्रभात के समान है, फिर कहते हैं आनंद में सुस्थित, काय में सुस्थित, आनंद में सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित, अस्खलित आनंद एक बार प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक बार प्रकट हुआ अस्खलित, अब वहां से स्खलित नहीं होगा, ऐसा अस्खलित एक रूप है और जो अचल माने जिसकी ज्योति अचल है, ऐसा यह आत्मा उदय को प्राप्त होता है। देखो आत्मा तो था और आत्मा तो निगोद में भी था और आत्मा तो है और आत्मा तो यहां भी है, अब निगोद में भी आत्मा को आत्मा उदय को प्राप्त नहीं हुआ और यहां आकर के भी हमें आत्मा उदय को प्राप्त नहीं हुआ, माने आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तो निगोद या मेर हमारे में क्या अंतर रहा। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं जानने में आ ही रहा है, तो वो तो निगोदिया को भी जानने में आ रहा है और वो तो हमको भी जानने में आ रहा है। ठीक है, गुरुदेव के नैरोबी के प्रवचन सुनना, बहुत गजब के प्रवचन इस गाथा के, कि निगोदिया को भी अभव्य को भी बालक को सबको जानने में आ रहा है और हमको भी वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा स्वयं जानने में आ रहा है ना, जानने में आने पर भी जानने में आ रहा है, उस ओर हमारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए हमें निर्विकल्प अनुभूति नहीं है और वही काम निगोदिया को भी नहीं है। तो निगोद जो काम निगोदिया कर रहा है, क्या कर रहा है कि प्रति समय आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में जानने में आने पर भी उसको नहीं जान रहा है, जो काम निगोदिया कर रहा है और वही काम हम मनुष्य भव और ऐसे ज्ञान का उघाड़ कि जिसमें आत्मा जानने में आ सकता है, उससे लोग कहते कि नहीं नहीं साहब बहुत कठिन है आत्मा को जानना, बहुत कठिन है आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा जानने में नहीं आ सकता। मैंने कहा तुम्हें इतना जानने में आता है ना कि आत्मा जानने में नहीं आ सकता, बस इतने में तुम्हें आत्मा जानने में आ ही रहा है, यह सिद्ध हो गया। क्योंकि जिन्हें वास्तव में आत्मा को जानने की योग्यता नहीं होती ना, उन्हें आत्मा जानने में नहीं आता यह जानने की योग्यता भी नहीं होती। आ गया समझे पॉइंट, आया। देखो गुरुदेव ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी आज कि निगोदिया जीव अपने अस्थि को स्वीकार नहीं करता, नहीं करता ना, नहीं करता, कर भी नहीं सकता, उसकी वैसी योग्यता नहीं है, है ना। तो यह दशा उसकी क्यों हुई कि तू भगवान आत्मा है और भगवान आत्मा होने पर भी तू अपनी भगवान आत्मा को आड़ देता है, मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा जानने में नहीं आता, आत्मा जानने में नहीं आता, वो प्रति समय जानने में आ रहा है और ये प्रति समय उसका निषेध कर रहा है कि आत्मा जानने में नहीं आता। कहते तेरे को जो ये आत्मा को तू आड़ दे रहा है, इस आड़ देने के फल में तुझे ऐसी गति प्राप्त हो जाएगी कि जहां तू आत्मा तो होगा लेकिन तेरी आत्मा के अस्तित्व को कोई स्वीकार करने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यहां तू आत्मा है और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर सकने की योग्यता रखता है और तू अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो तेरे इन भावों का फल क्या आएगा कि तुझे ऐसी गति में जाना पड़ेगा कि जहां तेरा अस्तित्व तो होगा लेकिन तेरे अस्तित्व को स्वीकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। बोलो, आलू की सुई की नोक के बराबर उतने से कण में असंख्यात औदारिक शरीर और एक एक औदारिक शरीर में तीनों काल के जितने सिद्ध हैं अनंत, उससे अनंत गुणे जीव एक निगोदिया शरीर में। आज जैनियों को ये बात बतावें तो उनको हंसी आती है, औरों की तो क्या बात करें, है ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या? कि भाई साहब हो नहीं सकता, ऐसा है, और ये केवल ज्ञानी परमात्मा के द्वारा जाना गया सत्य है। ये केवल ज्ञानी परमात्मा ने अपने ज्ञान में जान करके ये बात कही, लेकिन हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जब वे जीव अस्तित्व को स्वीकार करने योग्य थे तब उनने अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो आज ऐसी गति को प्राप्त हो गए कि जहां उनका अस्तित्व है लेकिन उनके अस्तित्व को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आज हम लोगों के पास एक अवसर है कि जिस अवसर में हम इस भगवान आत्मा के त्रैकालिक शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं, इस अस्तित्व का, चैतन्य के अस्तित्व का जैसा सुंदर स्पष्टीकरण हमारे सद्भाग्य से इस शताब्दी में बाहर आया गुरुदेव श्री के प्रताप से, वैसा शायद शताब्दियों में भी कभी नहीं हुआ हो। ये समझना, हजारों वर्षों का इतिहास अगर हम उठा करके देखें तो भगवान आत्मा की ऐसी खुल्लम खुल्ला चर्चा, जिनवाणी में तो वीतरागी संत लिख करके गए थे, लेकिन हजारों लोगों की झुंड में ये भगवान आत्मा की चर्चा सुनने का सद्भाग्य आज अपन लोगों को मिला है। ये सद्भाग्य हमारा कोरा नहीं चला जावे। गुरुदेव जिस आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए इस भरत भूमि पर पधारे थे, गुरुदेव श्री का ये आना हम लोग सार्थक करके दिखावें, और जब हम उनके उनकी इस देशना को कि जो उन्होंने आत्मा की प्राप्ति के लिए हमको देशना दी थी, जब हम उनकी इस देशना को सार्थक करके दिखाएंगे तभी हमें ये बोलने का अधिकार होगा, आ दास ना जीवन शिल्पी तने नमो हूं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने जिनका जीवन गढ़ा हो, हम ये कहें कि गुरुदेव आप हमारे जीवन के गढ़ने वाले हो, तो गुरुदेव के द्वारा गढ़ा हुआ जीवन कैसा जीवन होना चाहिए? क्या वो जीवन मिथ्यात्व की विकृति में सना हुआ जीवन होना चाहिए? है ना, तो गुरुदेव की देशना को सफल करने का, गुरुदेव की देशना को आत्मसात करने का जो बहुत बड़ा अपन लोगों के हित में, उसमें देखो गुरुदेव का हित तो गुरुदेव कर गए, हम अपना हित करेंगे उससे गुरुदेव का हित नहीं होने वाला, उनका हित तो हो चुका और उन्होंने अपना हित करके फिर अपने को हितकारी देशना दी है ना। उस देशना को हम आत्मसात करें और हम सभी के जीवन में ये सम्यक दर्शन का मंगलमय सुप्रभात हो, ये इस मंगल वर्ष का संदेश है जो आचार्य अमरचंद्र देव ने कलश के माध्यम से और अभी पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से और उसके बाद गुरुदेव श्री और बहन श्री ने मांगलिक के माध्यम से अपने को ये संदेश सुनाया, तो उस संदेश को, उस मांगलिक संदेश को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करें, ये इस मंगल दिवस की अपन लोगों के लिए एक भावना अपन लोग भाई। अब अपना जो नियम सार परमागम चल रहा था 71 नंबर के कलश में, तो वो बात कह दी थी, उसके बाद ये बात कह दी थी किस नए से जानूं सुबुद्धि कुबुद्धियों में कुछ भी अंतर, उसके बाद 72 नंबर का कलश आया था और 72 नंबर के कलश में भी एक बहुत मार्मिक बात आचार्य भगवान ने कही, क्योंकि 50 नंबर की गाथा पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज, क्योंकि इस अधिकार की सबसे क्रीम गाथा है 50 गाथा, और वो प्रवचन भी अपन सुन चुके गुरुदेव का, प्रवचन के प्रारंभ में ही गुरुदेव ने बोला घनी सखत गाथा छे, कठोर है। क्यों कठोर है? अरे जहां छाई के भाव भी पर द्रव्य और पर भाव कहा जाए उससे ज्यादा सूक्ष्मता है ना, और हमारी भाषा में कहें तो अरे भाई साहब अभी तो हम राग में भेद डालते हैं, शुभ राग की बात आवे और उस पर चोट पड़े तो हमारे कलेजे पर चोट पड़ती है, और अब तो तुम छाई के भाव को भी हे कहने लगे कि हम नहीं कहते। ये तो कौन कह रहे हैं? ये तो अमृतचंद्र, ये तो कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, ये तो पद्म प्रमलधारी देव कह रहे हैं। और हे कहने का अर्थ ये कि आश्रय करने की अपेक्षा से हे कह रहे हैं, आश्रय का विषय बता रहे हैं। ध्यान रखना, छाई के भाव को, छाई के भाव को हे करने से अर्थात त्रिकाली परम पारिणामिक भाव को उपादेय करने से छाई के भाव का जन्म होगा। बहुत से लोग कहते ना कि साहब पर्याय को दृष्टि के विषय में क्यों गौण किया जाता है, पर्याय को दृष्टि के विषय में शामिल क्यों नहीं किया जाता है, आखिर पर्याय द्रव्य का ही अंग है, तो फिर उस पर्याय को ऐसे बहुत सल्ले अपने अंदर में उठती रहती है कि भाई पर्याय की ये हेयता पर्याय के ही मंगल के लिए है, इसमें द्रव्य स्वभाव का कुछ मंगलपना नहीं होना है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो त्रैकालिक मंगल स्वरूप है ना। पर्याय की हेयता, वो पर्याय का ही मंगल होगा, अर्थात उसमें पर्याय की ही पवित्रता प्रकट होगी। ये बात आपने आएगी, देखो इसमें कि शुद्ध अशुद्ध नी जो विकल्पना ते मिथ्या दृष्टि ने हमेशा होई छे। अज्ञानी क्या करता है, द्रव्य स्वभाव का तो पता नहीं और क्या बोलता है, पर्याय पर खड़ा रह करके ये बोलता है शुद्ध अशुद्ध की विकल्पना, अभी मैं अशुद्ध हूं, अभी मेरी पर्याय में अशुद्धता है, अभी मुझे शुद्धता प्रकट करनी है, लेकिन प्रकट कैसे हो वो पता नहीं। मेरे पहले तो बोलेगा मैं अशुद्ध हूं, पर्याय वर्याय की तो बात ही नहीं, और मुझे शुद्ध होना है। तो पहली बात ये कि तू अशुद्ध है तो तू त्रिकाली अशुद्ध है या तात्कालिक अशुद्ध है। कि अगर तू कहता है कि मैं त्रिकाली अशुद्ध हूं तो तेरे शुद्धता प्रकट होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि त्रिकाली शुद्ध अशुद्ध तो जो त्रिकाल ही अशुद्ध हो वो शुद्धता कैसे प्रकट करेगा। और यदि तू ये कहता है कि मैं तात्कालिक अशुद्ध हूं मैंने पर्याय में अशुद्ध हूं, तो द्रव्य की शुद्धता के स्वीकार बिना पर्याय की पर्याय में अशुद्धता है ये तेने जाना कैसे भैया। सोचो जरा कि ये जो पर्याय में तुम कहता है कि मैं पर्याय में अशुद्ध हूं, तो पर्याय में अशुद्ध हूं ये तू किसके आधार पे कह रहा है? क्या तुझे द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का ज्ञान हो गया? क्या तुझे द्रव्य स्वभाव की पवित्रता लक्ष्य में आ गई? अरे जिसे द्रव्य स्वभाव की पवित्रता लक्ष्य में आई, क्या उस पर्याय के ये बोल होते हैं कि मैं अशुद्ध हूं? पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया? क्या कि देखो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का पता नहीं, और ये या तो वो अपने को अशुद्ध ही मानता है, तो जिसने अपने को त्रिकाल अशुद्ध माना अब उसकी बात तो भूल ही जाओ शुद्ध होने की कोई, वो ये कहेगा नहीं नहीं पर्याय में अशुद्धता है। तो आचार्य कहते हैं कि तू पर्याय में अशुद्धता है ये तू कहां खड़े रह करके बोल रहा है? क्या तुझे द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का ज्ञान हो गया? क्या तुझे द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का परिचय हो गया? क्या तुझे द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का अनुभव हो गया? क्यों? क्योंकि अगर तुझे द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का परिचय ही नहीं हुआ तो पर्याय में अशुद्धता है ये तूने किस आधार पर कहा हमें ये बता, एक पॉइंट। दूसरा कि हां जी मुझे द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का परिचय और अनुभव हो गया, मुझे माने द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का परिचय और द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का अनुभव द्रव्य स्वभाव को नहीं करना है, ध्यान देना वो तो कृतकृत्य है। द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का परिचय और अनुभव वो भी वर्तमान पर्याय में ही होता है, हो गया। तो जिस वर्तमान पर्याय ने द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का परिचय किया, द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का अनुभव किया, तो क्या उसने ये बोल रख करके अनुभव किया कि मैं अशुद्ध हूं? उसने द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का स्वीकार किया तो उस द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का स्वीकार कैसे होता है कि मैं शुद्ध हूं? यह द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का स्वीकार है। तो जब मैं शुद्ध हूं यह स्वीकार हो गया, अब कौन सी अशुद्धता बाकी बची जो तू अशुद्धता की चर्चा करता है? आगे समझ में नहीं आया समझ में, पॉइंट आया कि नहीं आया समझ में, है ना? बिंदु बहुत जोरदार है, कि पर्याय मेरे कि मेरी अशुद्धता पर्याय की, तू तू द्रव्य स्वभाव के सन्मुख देख करके द्रव्य स्वभाव का स्वीकार करता है या पर्याय के सन्मुख देख करके द्रव्य स्वभाव का स्वीकार करता है? अगर तू पर्याय के सन्मुख देख करके द्रव्य स्वभाव का स्वीकार करता है तो तू प्रति समय द्रव्य स्वभाव को गाली देता है। क्यों? क्योंकि पर्याय के सन्मुख देख करके कभी भी द्रव्य स्वभाव का स्वीकार नहीं होता। और यदि द्रव्य स्वभाव के सन्मुख देख करके स्वीकार करता है द्रव्य स्वभाव का वर्तमान परिणाम, द्रव्य स्वभाव का स्वीकार करता है, उस पर्याय का स्वर जो पर्याय द्रव्य स्वभाव के सन्मुख हुई, उस पर्याय का स्वर यह नहीं हो सकता कि द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है लेकिन मैं तो अशुद्ध हूं। ऐसा होता है। और ऐसा यदि स्वर हो तो भाई साहब उसने द्रव्य स्वभाव का स्वीकार किया है कि अपना स्वीकार किया, जरा बताना। नहीं, एक गरीब घर की लड़की हो, ठीक है, और किसी करोड़पति घर में उसकी शादी हो गई, वरमाला डाला उस लड़के के गले में, उसने वरमाला डाली है ना, अभी वो क्या हो गई, अब वो उस घर की कहलाएगी ना। अब वो क्या करे, जब भी कोई खाना खाने बैठे, हमारे घर में तो ऐसा होता था, कुछ भी काम करे और वो बात बात में अपने पीहर, हमारे यहां तो ऐसा होता था। शुरू शुरू में तो थोड़ा टाइम होगा तो सब सहन करेंगे कि ठीक है, अभी नई नई आई है, बेचारी को बार बार थोड़ी याद आती होगी। अब एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, उसके बाद भी कोई बात हमारे यहां तो ऐसा होता था, तो उसके पति ने कहा कि तू तुम्हारे यहीं जा ना, फिर यहां क्या कर रही है कि तुझे बार बार हमारे यहां, अरे हमारे यहां तेरा घर यह है कि वो है जिसने तुझे अपने घर से विदा किया, उनसे तो पूछ के तेरा घर कौन सा है। ऐसे पर्याय बार बार याद करे, मैं द्रव्य स्वभाव का ध्यान करती हूं, कि तू द्रव्य स्वभाव का ध्यान नहीं करती, तू अपना ध्यान करती है। क्यों? क्योंकि द्रव्य स्वभाव का ध्यान करने वाली पर्याय, द्रव्य स्वभाव का सद्दान करने वाली पर्याय, द्रव्य स्वभाव में एकत्व करने वाली पर्याय अपने को अलग बचा करके द्रव्य स्वभाव का ध्यान नहीं कर सकती। वो द्रव्य स्वभाव मय होकर के द्रव्य स्वभाव का ध्यान करती है और उसका स्वर यह होता है कि मैं तो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य कारण परमात्मा हूं। वो भले ही वर्तमान, भले ही पर्याय एक समय की, लेकिन एक समय की वो पर्याय अपने को एक समय की पर्याय रूप नहीं देखती, बल्कि वो अपने को अनादि अनंत कारण परमात्मा देखती है। तब कहा जाता है कि इस पर्याय ने द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य किया, मतलब वो अपने को मिटा करके, अपनी अस्थि को मिटा करके। कैसी पर्याय? कि जिसने पर्याय तो है लेकिन पर्याय का पर्यायपना मिट गया वहां पर। क्या कहा? पर्याय है तो पर्याय, लक्ष्य करेगा पर्याय, प्रतीति करेगी पर्याय, अनुभव करेगा पर्याय, ये सारा कार्य पर्याय में होगा। लेकिन गजब कि उस पर्याय में वो कार्य होगा कि जिस पर्याय में से पर्याय का पर्यायपना मिट गया हो, है ना, जिस पर्याय में सर्वांग में द्रव्य स्वभाव ध्रुव पसरा हो, उस पर्याय में पर्याय का पर्यायपना मिट गया, ध्रुवपना बस गया, ध्रुव कारण परमात्मा में ही यह मैं हूं ऐसा हो गया, उसको बोलते हैं कि इसने शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य किया। तो अब इस शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य कैसे किया? क्या पर्याय का लक्ष्य का स्वरूप यह है कि मैं अशुद्ध हूं और मैं द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके शुद्ध हो जाऊंगी, यह पर्याय का स्वर होता है? वो लक्ष्य हुआ ही नहीं द्रव्य स्वभाव का। द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य होने का मतलब यह कि वो द्रव्य स्वभाव के साथ अभेद होकर के ये बोली कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं। अब जिस परिणति का स्वर त्रिकाल शुद्ध हूं यह हुआ, अब ढूंढो अशुद्धता कहां है। आई बात समझ में? हां, ये बात अलग है, ध्यान से सुनना। अभी ऐसी श्रद्धा प्रकट होने के बाद ज्ञान भी साथ में होता है, और वो ज्ञान ये विवेक करता है कि द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से श्रद्धा की पूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर भी अभी चारित्र में किंचित अशुद्धता है, उसका विवेक भी कौन करता है? ज्ञान विवेक करता है। लेकिन ज्ञान ये विवेक करने पर भी ये काम नहीं करता कि उस अशुद्धता को अपने खाते में खतोने का काम ज्ञान नहीं करता। अशुद्धता है वो स्वलक्ष्य से नहीं हुई है, और शुद्धता है वो स्वलक्ष्य से हुई है। तो स्वलक्ष्य का स्वरूप, स्वलक्ष्य का परिणमन तो शुद्धता है। तो मेरा परिणमन कौन सा? कि जो मेरे लक्ष्य से होवे वो मेरा परिणमन, और जो मेरे लक्ष्य से नहीं होवे वो मेरा परिणमन नहीं। इसलिए शुद्धता का परिणमन ही वो मेरा परिणमन है, और सच में अशुद्धता का परिणमन वो मेरा परिणमन है ही नहीं। इस तरह ज्ञान विवेक करता है वहां में। अब नक्की करो कि शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना, वो तो पर्याय में खड़ा है। मिथ्या दृष्टि को सदैव होती है ना, और सम्यक दृष्टि को तो फिर क्या कह रहे हैं? देखो, सम्यक दृष्टि ने तो हमेशा एवी मान्यता होय छे कि कारण तत्व अने कार्य तत्व बनने शुद्ध छे। इसके दो अर्थ गुरुदेव ने किए, एक तो कारण तत्व माने त्रिकाली कारण तत्व शुद्ध है, और त्रिकाली कारण तत्व को जिस वर्तमान परिणति ने स्वीकार किया, ध्यान देना कि उस वो यद्यपि वो परिणति कार्य तत्व है, ध्यान देना क्या कहा कि यद्यपि वो परिणति कार्य तत्व है, लेकिन गजब ये कि उस परिणति ने अपने को कारण तत्व स्वीकार किया। जिस परिणति ने अपने को शुद्ध कारण तत्व स्वीकार किया उस परिणति को शुद्ध कार्य तत्व कहते हैं। यद्यपि वो शुद्ध कार्य तत्व है, लेकिन गजब है वह परिणति कि उस शुद्ध कार्य तत्व ने अपने को शुद्ध कार्य तत्व स्वीकार नहीं किया है। सम्यक दर्शन अपने को सम्यक दर्शन स्वीकार नहीं करता, सम्यक दर्शन अपने को ध्रुव त्रिकाली कारण परमात्मा स्वीकार करता है। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं, सम्यक दर्शन नो विषय, सम्यक दर्शन नी पर्याय पण नथी। यह है उसका मतलब। शुद्धात्मा एक रूप त्रिकाली कारण परमात्मा वो सम्यक दर्शन का विषय है। वो मैं ध्रुव की श्रद्धा करती हूं, श्रद्धा का श्रद्धा की पर्याय का ये स्वर भी नहीं होता। मैं ध्रुव की श्रद्धा करती हूं, अगर ये स्वर हो तो मैं ध्रुव की श्रद्धा करती हूं, तो उसने मैंपना कहां खड़ा रखा? मैंपना पर्याय में खड़ा रखा, और पर्याय में मैंपना खड़ा रख करके ध्रुव की श्रद्धा करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे दो पार्टियों का विलय होता है, अभी चुनाव का मौसम है अपने देश में, है ना, तो बहुत से जो दल बदलने वाले नेता हैं तो वे किसी बड़ी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करते हैं। तो पार्टी का विलय करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स पार्टी ने वाई पार्टी में विलय किया। तो एक्स पार्टी ने वाई पार्टी में विलय करने का मतलब क्या कि उसके सारे कार्यकर्ता अब वाई पार्टी के कार्यकर्ता कहलाएंगे, उसका संविधान अब वाई पार्टी का जो संविधान है वही उसका संविधान होगा। अब वो नेता कहेगा, देखो साहब, आप मैं आपकी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करता हूं, मेरे कार्यकर्ता आपकी पार्टी के कहलाएंगे, मेरा अपना कोई संविधान नहीं है, आपका जो संविधान है वही मेरा संविधान है। परंतु क्या? परंतु क्या? झंडा मेरा अलग रहेगा। आया समझे? झंडा अलग रहेगा कि भाई साहब अभी से हमें खतरे की बू आ रही है, आप पधारो, है ना। इसी तरह श्रद्धा ने कि मैं अपना संपूर्ण विलय ध्रुव स्वभाव में करती हूं, मैं ध्रुव स्वभाव की ही श्रद्धा करूंगी, कि तुम्हारा तो पहला कदम ही उल्टा है, मैं ध्रुव स्वभाव की ही श्रद्धा करूंगी, मैं पर्याय की श्रद्धा नहीं करूंगी। कि मैं पर्याय की श्रद्धा नहीं करूंगी ये तुम बोल रहे हो, लेकिन तुमने अपना मैंपने का झंडा अलग रखा हुआ है, तुम विश्वास के लायक नहीं हो, तुम कब दगा दे जाओगी कोई भरोसा नहीं है। आ गया? इसका मतलब क्या कि जिसका मैं पना पर्याय में नहीं होवे, जिसका मैं पना उस त्रिकाली स्वभाव में होवे कि तुम्हें कौन, कि मैं ध्रुव कारण परमात्मा। सम्यक दर्शन से पूछो कि तुम कौन हो, सम्यक ज्ञान से पूछो कि तुम कौन हो, सम्यक चारित्र से पूछो कि तुम कौन हो। और यदि उनकी उनका परिचय यह आवे कि मैं सम्यक दर्शन हूं, मैं सम्यक ज्ञान हूं, मैं सम्यक चारित्र हूं, अनंत निर्मल परिणतियों से पूछो कि तुम कौन हो, और उनका परिचय आवे कि मैं अमुक गुण की निर्मल परिणति हूं, मैं अमुक गुण की निर्मल परिणति हूं, या मैं अमुक गुण की निर्मल परिणति हूं, तो समझ लेना ये सब मिथ्या दर्शन का ही परिवार है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन सहित अनंत गुणों की निर्मल परिणतियों का एक परिचय होता है, और वो होता है मैं त्रिकाली कारण परमात्मा हूं। देखो, चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हो सकती है, लेकिन 96,000 रानियों का पति एक ही होता है। आया समझ में कि नहीं है? अगर चक्रवर्ती के कितनी रानियां? 96,000 रानियां। अब वो ये कहे कि जब तुम 96,000 रख सकते हो, समझ लेना उदाहरण में, तो वो नहीं हो सकता। अगर तुमने ये प्रयास भी किया तो तुम व्यभिचारिणी कहलाओगी। और चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, लेकिन 96,000 रानियों का एक पति, वो कौन? चक्रवर्ती। अगर वो मर जाता है तो 96,000 विधवा होती है। आगे समझ। इसी तरह अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां, क्यों? वो निर्मल परिणतियां अनंत हो सकती हैं, लेकिन अनंत निर्मल परिणतियों का एक छत्र स्वामी वो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है, है ना? अगर परिणतियां बगावत पर उतर आवे कि तुम सब, तुम हम अनंत के, तुम एक स्वामी कैसे, कि जैसे तुम एक हो और हम तुम्हारी अनंत परिणतियां हैं, ऐसे ही भले ही हम एक एक हैं, लेकिन हम भी अनंत को अपना स्वामी बनाएंगे। अगर तुम अनंतों को अपना स्वामी बनाओगे तो अनंत विकार करके अनंत संसार में भटकोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अनंत पर पदार्थों को आज तक अपना स्वामी बनाया, अनेक प्रकार के विकार करके अनंत काल से अनंत संसार के परिभ्रमण तुमने किए। अभी क्या करना, क्या करना? अनंत निर्मल परिणतियों का एक छत्र स्वामी त्रिकाली भगवान कारण परमात्मा। हर परिणति से पूछो कि तुम कौन, किसी भी परिणति से, किसी भी गुण की परिणति से पूछो कि तुम कौन, उसका एक उत्तर आता है कि मैं कारण परमात्मा हूं, मैं कारण परमात्मा हूं, मैं अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं, मैं परम पारनामिक भाव हूं। अरे उपसम भाव से पूछो तुम कौन, परम पारनामिक भाव। क्षोभसम भाव से पूछो तुम कौन, परम पारनामिक भाव। क्षयिक भाव से पूछो तुम कौन, परम पारनामिक भाव। जो भाव अपना परिचय परम पारनामिक भाव के रूप में देता है, उसी भाव का नाम उपसम भाव, क्षोभसम भाव और क्षयिक भाव है। और जो परिणाम अपना परिचय उपसम भाव, क्षोभसम भाव और क्षयिक भाव से भी देता है, समझ लेना वो औदयिक भाव है। आ गया समझ में? ये है 50 गाथा वास्तव में। तो क्या कि 50 गाथा यही इतनी सी गाथा है कि परम पारनामिक, जब सारा शुद्ध पर्याय समुदाय अपना परिचय परम पारनामिक भाव की ओर से देते हैं, अर्थात परम पारनामिक भाव रूप अपना परिचय देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो उपादेय भूत कौन सा भाव हुआ? तो उपादेय भूत भाव हुआ परम पारनामिक भाव। और जिन रूप में वो अपना परिचय नहीं देते, उदय भाव रूप में नहीं देते, उपसम भाव रूप में नहीं देते, क्षोभसम भाव रूप में नहीं देते, क्षयिक भाव रूप में नहीं देते, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि वे चारों भाव है ही है। आ गया? ये 50 नंबर की गाथा में कहा, जरा देख लो, बहुत अच्छी गाथा है और क्रीम गाथा है, गुरुदेव श्री की बहुत प्रिय गाथा है। गुरुदेव श्री को तो ऐसे सभी गाथाएं बहुत प्रिय होती थी। गुरुदेव बोलता आ गाथा घनी सूक्ष्म छे, फिर बात आई आ गाथा घनी सूक्ष्म छे, तो गुरुदेव से पूछे गिरी साहब कौन सी गाथा है जो सूक्ष्म नहीं है ये तो बताओ आप। हर गाथा जो भी गाथा घणो माल भरियो छे, दिगंबर संतोनी वाणी एने आगे जगत भरे पानी, हर 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 गाथा में वो शब्द आएगा। क्या करे, क्योंकि देखो ज्ञानी को तो हर गाथा में आत्मा दिखता है ना। देखो बहुत गजब की बात कह दी उसमें, देखो ये बहुत अपन हरि गीत पढ़ लेते हैं। पूर्वोक्त भावो पर दरब परिभावते थी है ये आत्मा जे छे आदेय अंत तत्व रूप निज द्रव्य जे। क्या कहते हैं इसमें कि पूर्वोक्त सर्व भावो, सर्व भाव माने कौन, कि पारनामिक भाव को छोड़कर, परम पारनामिक भाव को छोड़कर। अभी पारनामिक क्यों नहीं कहा, परम पारनामिक क्यों कहते हैं इस भाव को, कि देखो चार भाव होते हैं ना, उदय भाव, उपसम भाव, छुपसम भाव, छायिक भाव, ये कर्म की ओर से नाम है, कर्म के निमित्त की अपेक्षा से नाम है। अगर हम कर्म के निमित्त की अपेक्षा को गौण करें तो इन चार भावों को जय धवला में पारनामिक भाव कहा, और जब इन चार भावों को कर्म की अपेक्षा को गौण करके पारनामिक भाव कहा तो इनसे अलग बताने के लिए त्रिकाली स्वभाव को परम पारनामिक भाव कहा। आ गया, तो पूर्वोक्त सर्व भाव माने पर्याय रूप जो चार भाव है उन्होंने कहा कि ओ पर स्वभावो छे। ये पर स्वभाव माने क्या, कि एक रूप त्रिकाली स्वभाव नहीं है, एक रूप त्रिकाली स्वभाव नहीं है, यानी क्या मतलब कि इनमें विविधता है और इनमें एक रूपता नहीं है। आ गया, तो इसलिए इनको कहा कि पर स्वभाव है, और पर स्वभाव है तो जब त्रिकाली परम पारनामिक भाव स्वद्रव्य, क्योंकि स्व स्वभाव होने से वो स्वद्रव्य है, तो ये पर्याय रूप भाव पर स्वभाव माने त्रिकालिक एक रूप स्वभाव नहीं होने की वजह से जब इनको पर भाव कहा, तो इनको पर भाव कहा तो पारनामिक भाव को स्वभाव कहा, उनको परद्रव्य इनको परद्रव्य कहा तो त्रिकाली स्वभाव को क्या कहेंगे, स्वद्रव्य। ये पर भाव है, और इतेथी हे छे का मतलब क्या, मतलब हे है माने उपेक्षा करने लायक है, द्वेष करने लायक नहीं। उपेक्षा मतलब कि ये मैं हूं ऐसा नहीं मानना, बस ये हे का मतलब ये। और अंत तत्व कौन, जो कारण परमात्मा है, जो परम पारनामिक भाव है, जो सहज स्वभाव है, जो नित्य स्वभाव है, जो एक ज्ञायक भाव है, जो सामान्य स्वभाव है, जो सदृश स्वभाव है, जो भूतार्थ स्वभाव है, अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। छठी गाथा ज्ञायक भाव बोलेगी, बारहवीं गाथा भूतार्थ स्वभाव बोलेगी, सामान्य स्वभाव आएगा, सदृश स्वभाव आएगा, एक रूप स्वभाव आएगा, नित्य स्वभाव आएगा, निरपेक्ष स्वभाव नाम आएगा, स्वयंभू स्वभाव नाम आएगा, जो नाम से बोलना हो बोलो। तो वो जो अंत तत्व है ऐसा स्वद्रव्य आत्मा त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, परम पारनामिक भाव, सहज स्वभाव आत्मा उपादेय भवेत माने है, ये त्रिकाली स्वभाव मेरे लिए, मेरे को उपादेय है, दूसरा कुछ भी मेरे को उपादेय नहीं है, है ना। ये बहुत सुंदर गाथा है, गुरुदेव श्री के बहुत बार के इस गाथा के प्रवचन है, अलग अलग बार के। मैं तो खास तौर से प्रेरणा करना चाहूंगा कि आप इस गाथा के भी जितने बार के प्रवचन हैं, अपन लोगों का सौभाग्य कभी गुरुदेव श्री की सारी वाणी अपने को नेट पे और सीडी और डीवीडी और हर तरह से मोबाइल ऐप तक में उपलब्ध है, अब तो है ना। तो जितनी बार के प्रवचन है, इन प्रवचनों को जितनी गहराई से गंभीरता से अपन लोग सुन सकते हैं, सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचनों की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने हमें सम्यक दर्शन का विषय भूत भगवान आत्मा बताया, दृष्टि का विषय। ये गुरुदेव श्री का एक जबरदस्त अनुसंधान है, जिनवाणी में भले ही था लेकिन जिनवाणी में से इस विषय को खोज करके हमारे सामने गुरुदेव श्री ने रखा, और आज हम इस दृष्टि के विषय की, सम्यक दर्शन की विषय की चर्चा करने योग्य हुए। बहुत से लोगों को यह भी तकलीफ होती है साहब चर्चा करने से क्या होता है, चर्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा पहले चर्चा तो कर लो, अभी तुम चर्चा करने लायक ही नहीं बने हो तो चर्या क्या करोगे, है ना। तो पहले ये बात बात में आएगी, फिर ये बात प्रतीति में आएगी, और प्रतीति में आने के बाद परिणति में आएगी। चारित्र माने परिणति, श्रद्धा माने प्रतीति, और श्रद्धा के पहले होने वाला जो व्यवसाय है ज्ञान का, जिसको बहिश्री की भाषा में कहें तो वो कहती थी कि सच्चा ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो तो फिर प्रतीति होती है, और प्रतीति होने पर जो तत्व की सही समझ हुई थी उसको फिर सम्यक ज्ञान बोलते हैं। सम्यक ज्ञान और सच्चे ज्ञान में क्या अंतर है, कि कोई अंतर नहीं है। परिणति हो, सम्यक होने के बाद, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद, उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोलते हैं जिसको सम्यक दर्शन के पहले सच्चा ज्ञान बोलते हैं। तो कम से कम हम उस सच्चे ज्ञान तक पहुंचकर अपनी परिणति में सम्यक दर्शन का उत्पाद करें, और अपने में सम्यक ज्ञान प्रकट करके मंगलमय सुप्रभात आज के दिन प्रकट करें। इसी पवित्र भावना से अभी की बात पूरी करते
हैं। सुवर्णपुरी जयमाला मुकवा मावशे।
मुक्ति मार्ग प्रकाशक है, स्वानुभूति तीर्थ अति मंगल है,
स्वानुभूति तीर्थ अति मंगल है।
शाती तजिनवर मंदिर है, दिव्य मूरत सी मंदिर जिनकी,
दिव्य मूरत सी मंदिर जिनकी,
जिनके दर्शन कर जग प्राणी आत्म शांति सुख पाते हैं,
आत्म शांति सुख पाते हैं।
चितार है समोसर जहाँ कुंद प्रभु जी पधारे हैं,
कुंद प्रभु जी पधारे हैं।
उन्नत मानस तभ दिव्य महा विदेही नाथ विराजे हैं,
विदेही नाथ विराजे हैं।
परमागम मंदिर अद्भुत है, प्रभु महावीर की मूरत है,
प्रभु महावीर की मूरत है।
कुंद कुंद चरण अभिराम बने, पंच परमागम श्रुति मंदिर में,
पंच परमागम श्रुति मंदिर में।
आदिनाथ प्रभु अरुजिनवर वृंद रत्नों जड़ित वचनामृत है,
रत्नों जड़ित वचनामृत है।
स्वाध्याय मंदिर बनाते सुंदर जहाँ कहन गुरु ने वास किया,
जहाँ कहन गुरु ने वास किया।
45 वर्षों तक जहाँ गुरु ने अध्यात्म ध्यान किया,
गुरु ने अध्यात्म ध्यान किया।
भीनी वाणी बरसे मानो अमृत धारा बरसे,
मानो अमृत धारा बरसे।
गुरु वचनामृत से सारे जग में फैली आत्म की हरियाली,
फैली आत्म की हरियाली।
जन मंडप सुविशाल अहो, गुरु प्रभावना का स्मारक है,
गुरु प्रभावना का स्मारक है।
पौराणिक चित्रावली अंकित पंच परमागम हरि गीत रचे,
पंच परमागम हरि गीत रचे। ज्ञान वैराग्य भक्ति का संगम है, स्तुति ज्ञान अलौकिक मंगल है,
स्तुति ज्ञान अलौकिक मंगल है।
जयवंत रहो जयवंत रहो, स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो,
स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो।
तारण हारे गुरुदेव का ये, स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो,
स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो,
जयवंत रहो जयवंत रहो,
स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो, स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो।
तारण हारे गुरुदेव का ये, स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो,
स्वानुभूति तीर्थ जयवंत रहो।
मंगल मंगल कर है,
मंगल 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 कर है।
बोलो कहन गुरु भगवती माता नि श्रद्धा भूमि अध्यात्मिक क्षेत्र स्वर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। પ્રારંભમાં સમીસાજીના 268માં કળશ દ્વારા તથા ત્યારબાદ નિયમસાજીની 50મી ગાથા દ્વારા શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ બિજોલિયાએ આપણને આજના મંગલમય સુપ્રભાતના દિને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવાની પ્રેરણા આપી છે, તે માટે આવા સુંદર સ્વાધ્યાય માટે ફરી ફરી આપણે એમનો આભાર માનીએ છીએ। જય જીનેન્દ્ર। આ શરીરી સ્થિત દર્શન પ્રાપ્ત લોકાગ્રહ બિરાજમાન રૂપાધી માય પરમ 24 જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો। હાલ વિધિ ક્ષેત્રમાં વિદ્યમાન સમોસરમાં શોભાયમાન શ્રીમંદરાદી અજીત વીર્ય પર્યંત 20 વીરમાન જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો। અદ્ય જીન મંદિરમાં જયવંતપણે બિરાજમાન રૌધામની ધક્તિધૂણી દખાવનાર અખંડ સાધના પ્રતિક શ્રી બાહુબલી મનીન્દ્ર ભગવાનનો જય હો। દિવ્યધ્વનિના સારભૂત નિત્યબોધક પરમાગમ સમયસાર પ્રવચનસાર નિયમસાર આદિ સમસ્ત જીનવાણી માતનો જય હો। સદેહે વિદ્યનો પ્રવાસ કરી ભરત ક્ષેત્રના ભવ્ય ભક્તોને જીનવાણી માતના ભેટના કરાવનાર ભગવાન શ્રી કુંદકુંદ આચાર્ય દેવનો જય હો। લાખો કરોડો ભક્તોના તારણહાર મહાવીર ભગવાનનો શાસન સ્વભાવનાર શ્રીમંદર ભગવાનના વારસદાર અમ ભક્તોના તારણહાર શ્રી કહાનગુરુ દેવનો જય હો। કહાનગુરુ કેળાએ ધર્મરત્ન પ્રસન્નમૂર્તિ ધન્યવતાર પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો। અમૂલ્ય તત્વના વિચારક આત્મસિદ્ધિના પ્રદાતા મુનિદર્શના પૂર્વસરની ભાવના જાગૃત કરાવનાર પરમ કૃપાળુ દેવનો જય હો। મંગલમય સુપ્રભાત સ્વરૂપ સમસ્ત દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો। મંગલમય સુપ્રભાત સ્વરૂપ પરમ મંગલકારી પંચ પરમેશ્વરી ભગવાનનો જય હો। સદા સર્વદા જયવંત વર્તો પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। હે જીનવાણી ભારતી તો હે જપુ દિન રૈન, જો તેરા શરણાગ્રહે સો પાવે સુખ ચૈન, જા વાણી કે જ્ઞાન તે સુજેલો કાલોક, સો વાણી મસ્તક નમુ સદા દેત હું તો। બોલો જીનવાણી માતનો જય હો। Thank you.